संघ में जीवन का उद्देश्य भूल गए हैं, कुसंग विषय वासनाएं, घर परिवार, जैसे प्रभुपाद ने अपना कृष्ण भगवान ने कहा ना, ये पांच लोग का अमानित्वम अधम्बित्वम अहिंसा शांति अर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थिर महात्मा विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसक्ति ना विश्व संगा पुत्र द्वारा गृहादिशु। भगवान कहते हैं आसक्ति पुत्र स्त्री और ग्रह से विराग आसक्ति, हम सब आसक्त हैं तो ये ठीक नहीं सब कुछ है। ये जो आसक्ति है ये आसक्ति नरक का द्वार है, ये आसक्ति हमको नरक में ले जाएगी। तो हम सब नरक में ही जाने की तैयारी कर रहे हैं। 99.9% लोगों की ऐसी गति है, 1% प्रयास कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना कि मनुष्यानाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित जो वेति माम तत्वता। इसमें सहस्र कहते हैं हजार को। एक लेक्चर में प्रभुपाद ने क्या कहा कि मनुष्यानाम मिलियनेशु, कलयुग में करोड़ों को एक प्रयास करता है भगवत प्राप्ति करने के लिए, उन भगवत प्राप्ति करने वालों में से कोई एक भगवान को भगवत प्राप्ति कर सकता है। कोई कहेगी फिर मैं करूंगा ही, इसके किए बिना रास्ता भी कोई नहीं है, भगवत प्राप्ति करनी ही पड़ेगी, नहीं तो हमें आवागमन में 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो भगवत प्राप्ति कैसी होगी जबकि हम लोग नरकों में पड़े हैं, नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखो अगर हम भक्ति मां की कृपा से भगवान से हमारा संपर्क नहीं हुआ है ना तो हम नरक में, और कोई सुख नहीं है इस नरक में, इस संसार में कोई सुख नहीं है, संसार में तो दुख ही दुख है। लेकिन हम अज्ञानी होने के कारण, विषयी होने के कारण इसी दुख में ही सुख ढूंढ रहे हैं, तो इसमें सुख है ही नहीं। जैसे भगवान ने कहा ना कि ये संसार क्या है, मामोपत्या पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम, जो जन्म है उसकी मृत्यु है और ये संसार दुखों का घर है, दुखालय। लेकिन मैं ज्ञानी इतना से सुख ढूंढ रहा हूं, तो हमें क्या करना है? साधु संघ, जैसे गौर हरि ने कहा साधु संघ करने के लिए सारे शास्त्र। प्रश्न एक उठता है, जब मैंने अभी भी कहा कि 99.9% लोग तो नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो 1% लोग तैयारी कर रहे होंगे भगवान के पास जाने की, तो फिर संघ कैसे होगा, कैसे साधु संघ मिलेगा? तो ऐसा बताया कि जो पूर्व काल में जो वैष्णव हुए हैं उनका जीवन गायन करने से हम साधु संघ करेंगे। तो आज एक इतने महान आचार्य श्रीनिवास ठाकुर, नारद जी के अवतार हैं श्रीनिवास ठाकुर, उनका प्राकट, उनका तिरुभाव है। वैसे वैष्णव प्रकट हो या धाम में चले जाएं, कोई उसमें कहा ना कि जब वैष्णव चले जाते हैं ना तो सेलिब्रेशन इन सेपरेशन, जुदाई में उत्सव मनाया जाता है। क्यों? अरे चले गए वो, अरे जब जिंदा थे तो प्रचार कर रहे थे, लोगों का मंगल कर रहे थे, चले गए तो भगवान के पास चले गए, अफसोस की बात क्या है? अफसोस की कोई बात ही नहीं है। कहा कि साधुओं के मोरोवा जीवोवा, साधु मरे ना जिए दोनों में शुभ है। तो आज के दिन शिला श्रीनिवास ठाकुर जो है वो धाम में चले गए थे। प्रभुपाद एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कि साधु मोरोबा जीवोबा क्या कहा उन्होंने कि एक संत आशीर्वाद दे रही है और राजा के पुत्र को क्या कहते हैं, राजपुत्र चिरंजीव, राजा के बेटे तेरी बड़ी लंबी आयु हो, ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया? क्योंकि उसने मरने के बाद नरक में जाना है। ऐसा कहा कि तपो राज राजो नरक, इसलिए कहते हैं राजपुत्र चिरंजीव। भाई अब तू जितना जी ले ठीक है, मरने के बाद तूने नरक में सड़ना है, क्योंकि राजऋषि ऐसे होते थे संत रूपी राजे, वो भगवान के पास जाते थे। आज कहाँ है? अच्छा ओक आशीर्वाद देते हैं कसाई को, कसाई को क्या कहते हैं, मां जीव मां मर, तू ना जी और ना मर, ये क्या आशीर्वाद दिया? अगर तू जिएगा तो बुरे काम करेगा, पशुओं को काटेगा, मरेगा, घोर नरक में सड़ेगा, ना तू जी ना मर, मां जीव मां मर। तो वो ही एक वैष्णव को आशीर्वाद देते हैं कि मोरोवा जीवोवा, तुम जियो या मरो, अगर तुम जीते हो तो प्रचार कर रहे हो, मरोगे तो धाम में जाओगे। तो श्रीवास ठाकुर तो बड़े महान वैष्णव थे और वो नारी जी के अवतार हैं चैतन्य लीला में। जब हरि बोल तो बाद में मिलना हुआ है। भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनके पार्षद, उनके भक्त, उनके उनकी शक्तियां साथ में आती हैं। जैसे राजा कहीं अकेला नहीं जाता, तो भगवान राजा नहीं है, राजाओं के राजा है, सबके मालिक हैं, सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान। तो पंच तत्व के रूप में जब भगवान कृष्ण चैतन्य स्वयं नित्यानंद, उनके विस्तार अद्वैताचार्य अवतार महाविष्णु के गदाधार परा प्रकृति राधा रानी श्रीवास जी तटस्था प्रकृति उनके भक्त प्रकट हुए थे, नारद जी उनके साथ आए। तो आज हमने, आज के दिन नारद जी चले गए हैं, हमने उनका संग करना है। एक वैष्णव लौकिक भजन गाते हैं, जब वैष्णव की स्मृति में ये भजन गाया जाता है, तो आप सब पीछे बोलने का प्रयास करना। अगर किसी के पास सांग बुक है, ये अनिलो प्रेमा धन को निकाल दे। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिलो प्रेमा करुणा प्रचुर, हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु को था गेला, कहा मोरा स्वरूप रूपा कहा सनाता, कहा दास रघुनाथ पतिता पावा, कहा वीरा कहा मोरा भट कहा एका काले कौठा गेला गोरा नटरा एका काले बाशाने कोटी बो माथा अनिले पाशी बो पाशाने कोटी वो माता अनिले पाशी कौरंगा गुनेरा निधि कोटा गेले पबो कौरंगा सही सवा संगीरा संगे ये कोयलो विला सही सवा संगी ये कोयलो सही संग न पाया कांदे नरो तमदा सही संग न पाया नीलो प्रेम दान करुणा प्रचु प्रभु को नागेला आचार्य जगो हे न प्रभु को जय श्रीवास ठाकुर जय श्रीवास ठाकुर जय श्रीवास ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय श्रीवास ठाकुर जय आचार्य ठाकुर प्रभुपाद 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 बोलो शिला श्रीमद ठाकुर तिरु महा महोत्सव की। ये जो भजन है हमारे परमाचार्य शिला नरोत्तम ठाकुर शुद्ध भक्त, शुद्ध का अर्थ है जो भौतिक कंटामिनेशन से मुक्त है, जिसके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं, इच्छा तो वैसे खत्म नहीं हो सकती, तो फिर क्या किया जाएगा? इच्छाओं को स्पिरिचुअलाइज किया जा सकता है। जैसे मेरी इच्छा अपने मन को प्रसन्न करने की, इसको स्पिरिचुअलाइज मैं कैसे करूंगा? मैंने कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो फिर कृष्ण को प्रसन्न करने से मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। अगर मैं कृष्ण को प्रसन्न करूंगा तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा। ये तो भी समझी है ना, ज्ञानता है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण में लेक्चर सुन रहा था प्रभुपाद का, ये हाथ है, टांगे हैं, नाक है, आंखें हैं, इन सब का काम क्या है? जो सेंट्रल पॉइंट पेट है, इसमें भोजन डालना। तो अगर ये भोजन डाल दें, एक दिन ये सारे हाथ पांव नाक कान स्ट्राइक पे चले जाते हैं। कहते हम क्यों, हम नहीं डालेंगे, हम नहीं स्ट्राइक। तो क्या स्ट्राइक में जब चले जाते हैं तो कमजोर पड़ जाते हैं सब? यही गति हमारी है, कमजोर पड़ जाते हैं। फिर कहते हैं भाई पेट में डालना ही पड़ेगा, तभी हमें शक्ति मिलेगी। यही गति हमारी। अगर हम कृष्ण को प्रसन्न करेंगे ना, हम सब प्रसन्न हो जाएंगे। लोगों को पता नहीं है ना, बड़ा शुक्र है राधिका रमन का, कृष्ण बलराम का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता का, उन्होंने अपने शुद्ध भक्त को भेजा है। ये शुद्ध भक्त भगवान के भेजे हुए हैं हम लोगों को नरक में जाने से बचाने के लिए। फिर भी हमारे ऊपर है, नरक में जाने से बचना चाहते हैं या नहीं? जैसे अर्जुन को कहा ना भगवान ने, अर्जुन इति ते ज्ञानम आख्यातम घूयात घूयतर मया विमृश ये तत्ना तथे छसी तथा करो। अभी मैंने गीता का परम गोपनीय ज्ञान तेरे को दे दिया, अब जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। देखो लोग क्यों, कई बार ऐसे भी लोग कहते हैं जी क्यों भगवान हमें कंट्रोल नहीं करते, हम यहां पड़ गए हैं। कई कहते हैं जी, बड़ी अटकलें मारते हैं लोग। भगवान का जो कुछ रचना है ना, सब परफेक्ट है, पूर्ण है, तो फिर कमी कहाँ है? मेरे समझने में कमी है, मेरी बुद्धि मलिन है, मैं इस काम विकार के द्वारा, विषय वासनाओं के द्वारा ग्रस्त हो गया हूं और मेरी इंटेलिजेंस क्लाउडेड हो गई है, मैं समझ नहीं पा रहा बातों को यथारूप में। तो देखो एक बात और, भगवान सब पर कृपा करते हैं, सब पर, दुष्टों पर भी, उन पर भी करते हैं। कैसे? क्या दुर्योधन को समझाने भगवान नहीं गए? तो फिर फर्क कहां पड़ा? भगवान सब पर कृपा करते हैं, लेकिन जो भक्त है ना, वो भगवान की कृपा को समझ लेता है, वो भक्त है ना, और जो भक्त नहीं है वो नहीं समझ पाता। इसलिए भक्त बनना परम आवश्यक है। सब भक्ति करो, नाम जपो, भगवान की सेवा करो, तो फिर भगवान तो हमें समझाने का प्रयास करेंगे और समझ में भी आना शुरू हो जाएगा। पर अगर हम संसार में फंसे रहे, फिर भी हमें भगवान समझाने का प्रयास करेंगे, वो कैसे मैं बताता हूं। देखो आपके समझ में आए तो हां करना, नहीं आए तो ना करना। जब मैं पैदा हुआ था, बालक था, जवान हो गया मैं, बाल मेरे काले थे, हैं, तो मेरे बाल भगवान ने अभी सफेद कर दिए। क्यों? जाना है संसार, तेरा घर नहीं है, मेरे पास आने की तैयारी कर। मैंने क्या किया? बालों को काला कर दिया। काले बाल अच्छे लगते भगवान के, तो बड़ा अज्ञानी मूर्ख है। फिर भगवान ने मेरे दांत गिरा दिए, मैंने नकली दांत लगा लिए, आंखों की रोशनी कम कर दी, तो भगवान ने, मैंने ऐनक लगा ली। अभी भगवान तो प्रयास कर रहे हैं, मैं भक्त ना होने के कारण कुछ नहीं समझ पा रहा। बोलो मैं गलत कह रहा हूं? समझ आ रही नहीं बातें? भक्ति करेंगे ना, नाम जपेंगे, खास करके ये महामंत्र जो स्वयं भगवान ने दिया है, गाए गौरा मधुर स्वरे, गौर भगवान भी इस मंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, गौर भगवान स्वयं कीर्तन करके कितने दयालु हैं, गौर हरे। लेकिन समझ आ रहा है? 99.9% लोगों को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि भक्त नहीं है, लोग भटके हुए हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई किसी मत मतांतर को फॉलो कर रहा है, कोई किसी को फॉलो कर रहा है। बड़े प्रभुपद बड़े अच्छे ढंग से सबको समझा रहे हैं। तो अगर मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, अगर हम भक्त बन के ना, मान लो भक्त बनने का प्रयास भी हम करेंगे, प्रयास ही नहीं करते, मन हमारा इतना दुष्ट है कि प्रयास भी नहीं करते, मन हमारा विषय वासनाओं के कारण इतना लथार्जिक हो चुका है कि हम प्रयास भी नहीं करते। अगर हम शिला श्रीवास ठाकुर का तेरो भाव है, बड़े महान थे श्रीवास ठाकुर, उनकी कृपा से अगर हमने प्रयास करना भी शुरू कर दिया ना, तो सफलता जरूर मिल जाएगी। अंग्रेजी में कहा है कि ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस। प्रयास नहीं करते हम। अभी इस भेष में भी, ये भेष धारण किया मैंने, इसमें मैं बदमाशियां कर रहा हूं, उल्टे सीधे काम कर रहा हूं, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा हूं। मैं धूल नहीं झोंक रहा लोगों की आंखों में, अपनी आंखों में धूल डाल रहा हूं मैं। जैसे बात हुई है, किसने पड़ी थी, कहते आदमी, कल एक बड़े सज्जन से मिले हम, कहते हैं जी मैंने शुरू से मुझे कहता, मैं किसी को नहीं बताता, आपको बता रहा हूं, कुछ अनुभव बताए उन्होंने। कहते हैं कि मैंने शादी नहीं करनी थी, लेकिन मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी करा दी। मैंने कहा इसलिए आप तो हमारे डिपार्टमेंट के हैं, लोग हंसने लगा, तो बड़ी अच्छी, अभी भी उसका यही है, दूसरों का भला करना, अच्छा करना। तो मनुष्य जो है इन बातों को नहीं समझ सकता कि भगवान मेरे पर कृपा कर रहे हैं। भगवान कृपा करते हैं, लेकिन जीव अविद्या में। अभी देखो, क्या दुर्योधन पर कृपा नहीं की थी भगवान ने? बोलो, बोल दो। लेकिन उसने सुना, समझी बात? भगवान ने कहा, दुर्योधन तेरे भाई युद्ध नहीं करना चाहते, तू ऐसा कर 5 गांव दे दे उनको, ताकि 5 गांव पर वो राज्य करके अपनी जीविका का निर्वाह कर ले। यहां रख दो, कोई बात नहीं, यहां रख दो, नहीं करना रिकॉर्डिंग, रख लो, इतनी दूर से अच्छी नहीं होगी। 5 गांव दे दो अपने पास, हंस रहे, शांति, 5 भाइयों को 5 गांव दे दो, उस पर वो राज्य करके अपनी जीविका का निर्वाह कर लेंगे। दुर्योधन कहते, 5 गांव? मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। सर्वनाश करवा दिया, लेकिन 5 गांव नहीं दिए, सुई की नोक के बराबर जगह। ये है दुष्टों का हाल, आज हम सब दुष्ट बन रहे हैं। मैं अगर अपना अंदर झांक के देखूं, मुझे दिखेगा मैं कितना दुष्ट हूं। तो श्रीवास ठाकुर से प्रार्थना करनी है। श्रीवास ठाकुर भक्ति के दाता है। देखो, जितने ध्रुव, प्रहलाद आदि बड़े बड़े भक्त हुए, सबके गुरु कौन थे? नारद जी। और मैं एक और आपसे निवेदन करूंगा कि लोग आजकल, ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो गया। पहले थी वो बॉम्बे का फिल्म इंडस्ट्री, अभी बॉलीवुड बन गया है। हॉलीवुड उधर और बॉलीवुड इधर, मतलब नरक में ले जा रहे हैं लोगों को। ये मैं आपको बताऊं, प्रभुपाद ये कैसे संत देखे। एक बार प्रभुपाद को मिलने के लिए बॉम्बे में, कोई 75 की बात है, बड़े फिल्म स्टार आ गए। उसमें प्रेमनाथ था, नूतन थी, तनुजा थी, एक डायरेक्टर थे। वो सोचने लगे कि स्वामी जी हमें कुछ फिल्म बनाने के लिए देंगे। प्रभुपाद ने एक को भी घास नहीं डाला, बिल्कुल घास नहीं डाला। और हमारे गुरु भाई वहां फोटो खिंचा रहे हैं। मैं गुरु कृपा से बैठा रहा एक साइड में, मैंने, मेरे गुरु इनको घास नहीं डाल रहे। मेरे मन में भी आ रहा था फोटो खिंचाऊं उनके साथ, बड़े फेमस है ना, लेकिन मैंने नहीं खिंचाया गुरु कृपा से। और प्रभुपाद जानते हैं, प्रभुपाद कहते बेकार है साले, इन्होंने क्या किया, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने भारत का। लोग पागल है, कोई एक्टर आ जाए दुनिया चल पड़ेगी, है क्यों? लोग पागल है, लोग विषय वासनाओं में इतने पागल हैं, अहंकार मत होइया, ऐसे लोगों के पीछे जाते हैं। और ऐसे लोग भी सोचते हैं, ओ भाई यार बड़ी दुनिया में सुनने के लिए आ रही है। अभी जैसे अनूप जो लौटा है, विषय लंबा हो रहा है, आज समय पर समाप्ति करनी है ना। अरे कुछ कहते नहीं, और ये कहता हाँ, पिछ वाले कहते नहीं, आज नहीं कहते। तो क्या कह रहा था मैं, अनूप जलोटा मुझे इंग्लैंड में मिला। आपने पता अनूप जलोटा ने कितनी शादियां कर रखी हैं? 3 शादी, 3 लड़कियों के जीवन बर्बाद किए हैं। और मिला तो एक जो उसके साथ थी, उसने बताया कि ये ऐसा है, एक वो गुणवंत थे, उसने मुझे बताया कि अनूप जलोटा इसके साथ भी दुर्व्यवहार करता है, इसको छोड़ने के लिए तैयार है। तो अनूप जलोटा भजन गाता है, लोग ताली हो जाएंगे। और है पल्ले दर्जे का बदमाश। एक बार अनूप जलोटा ने उधर प्रोग्राम किया, कहा कलकत्ता में, भजन संध्या, भजन बहुत गाता है ना, आपको पता है, बहुत सारे अनूप जलोटा के भजन सुनते हैं। अगर जिसको धाम में जाना है ना, बिल्कुल उसके भजन मत सुनो। हाँ, नरक में जाना तो सुनो, मैं उसका हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो कलकत्ता में उसने भजन संध्या की, उसके बाद उन्होंने प्रोग्राम रखा था खाने पीने का। अनूप जी मांस भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं। तो प्रेस वाले भी थे, प्रेस वाले आ जाते हैं, प्रेस वाले कहते हैं, जलोटा जी आप तो हरे कृष्ण के साथ एसोसिएट हैं, और हरे कृष्णा वाले तो मां शराब का सेवन नहीं करते। जवाब क्या देता है? कहता है मैं हरे कृष्णा वालों के साथ एसोसिएट नहीं हूं, हरे कृष्णा वाले मेरे साथ एसोसिएट हैं। देखा? और उसका बाप मिला मुझे शिकागो में, पुरुषोत्तम जी लोटा मिला तो नाम बड़ा, मैंने बातचीत की उससे, मैंने पुरुषोत्तम जी आप बड़े अच्छे भजन गायक हैं कि नहीं, आप तो कलाकार हैं। वो कहता है, मैंने कहा आप मांस शराब का सेवन नहीं करते? कहते करता हूं, जैसा बाप वैसा बेटा, मांस भी खाता है शराब भी पीता है। मैंने कहा आप कैसे गायक है? कहते हम तो कलाकार हैं। मैंने कहा आज के बाद बंद आपका, ऑर्डर कर दिया उसको। वो जिस घर में थे वो भाटिया परिवार थे, वो भी वेजिटेरियन थे। कहते महाराज मैं तो बड़े समय से इनको कह रही थी, ये मेरे गुरु जी सुनते नहीं थे, कि आपकी बात सुन ली इन्होंने। ये हालत है जो खुद उल्टे सीधे काम कर रहा है कि कहा ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे नर अचरे हैं ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत हैं, तुम ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, जो अचर न करते हैं वो बहुत कम है। प्रभुपाद क्यों सारी दुनिया में फेमस हुए? जो कहा वो किया। खाली वो प्रचारक नहीं थे, बड़े प्रचारक हैं, पैसे इकट्ठे करके ले आते हैं, अरे पढ़ते पीछे क्या करते तो क्या हो, भारत तो भरा है लोगों से। तो कृपा करके ये बड़ी समझने की बात है, इन बातों को समझो, क्योंकि प्रभुपाद सभी का उद्धार चाहते थे। हम तो उनके चरणों की धूली भी नहीं, लेकिन उनकी कृपा से हम अपना भी चाहते हैं और आपका भी चाहते हैं। प्रभुपाद लेक्चर में इतनी इतने टेंस लेक्चर है उनके, कहते ये मत सोचो फिर से जन्म मैंने लेना है, आगे कलयुग और खराब होता जाएगा, कलयुग छनी होगा, लोग बेकार हो जाए। अभी देखो पहले अबॉर्शन भ्रूण हत्या जो है इसका सजा थी, औरत अगर भ्रूण हत्या करती तो उसको कत्ल माना जाता था। आज सरकार कहती है बच्चों को मारो, हम 70 रुपया देंगे एक बच्चे को मारने के। पहले पहले ये था, सरकार ने नहीं, तो बड़ी बुरी हालत। हम देखो अभी मैंने कल देखा, उसमें एक ने दिखाया मुझे क्या हालत हो रही है उत्तराखंड में, लोग खड़े हैं 5-7 औरत खड़ी है, पानी आ गया, कोई नहीं बचा रहा उनको। देखो बह गए सारे, चिल्ला रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता। अरे वो मर गए, हमें हमारे पास क्या गारंटी है, किसी के पास नहीं है। लेकिन बुद्धि हमारी इतनी मलिन हो चुकी है, हमें समझ नहीं आ रही है। खैर तो नरोत्तम ठाकुर बड़े महान वैष्णव हुए और उन्होंने ये भजन लिखा है, ये अनिलो प्रेमाधन, जो अपराकृत प्रेम का एक तो प्राकृत प्रेम है ना, एक अपराकृत, जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवास आचार्य ठाकुर कहां गए? वैष्णव को याद किया जा रहा है। मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप को स्वामी कहां है, शिला सनातन कहां है, पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहां है, मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहां है, और शिला कृष्णदास कविराज कहां है, महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहां चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा, सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहां पाऊंगा। श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों के संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। तो शिला श्रीवास ठाकुर जो बड़े महान आचार्य हैं, उनके जीवन के बारे में आप पढ़ेंगे। श्रीवास ठाकुर एक ब्राह्मण परिवार में प्रकट हुए, ये ब्राह्मण थे और इनका प्राकट्य जो है गौर भगवान से पहले हुआ था, ये पहले प्रकटे थे। पंच तत्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद के पंचम तत्व श्रीवास पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के पूर्व नवद्वीप में निवास करते थे महाप्रभु के प्रकट से पहले। श्रील श्रीवास श्री कृष्ण नाम कीर्तन, श्री कृष्ण पूजा अर्चना तथा प्रतिदिन 3 बार गंगा स्नान जैसे भक्ति कृत्यों से व्याप्त अपने भ्राताओं श्री राम श्री निधि तथा श्रीपति के जीवन में उनका मार्गदर्शन करते थे। इनके भाई थे श्री राम श्री निधि और श्रीपति, 3 भाई। श्रील अद्वैताचार्य प्रभु के संग में उन्होंने भगवत अध्ययन किया। अद्वैताचार्य जो थे महाविष्णु के अवतार थे, पंच तत्व बड़े दयालु हैं, अद्वैताचार्य सारे बड़े दयालु हैं तथा भगवान के अवतार हेतु प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना क्यों की? क्योंकि केवल श्री कृष्ण का अवतार ही उस समय नदिया को उत्पीड़ित करने वाले निर्णित नास्तिकों तर्कशास्त्रियों तथा दंभी पंडितों के मध्य पुनः वैष्णववाद स्थापित कर सकता था। अभी देखो कि गौर भगवान को लाने के लिए पृथ्वी पर शिवा अपना अद्वैताचार्य का बड़ा हाथ है। उन्होंने प्रयास किया पर उन्होंने कहा कि हे कृष्ण आपके बिना ये कलयुग के लोग नहीं समझ सकते। जैसे कहा ना बंगाल की हालत बड़ी खराब थी, ना पंडित लोग नास्तिक दंभी लोग बड़े दोष में भरे हुए, हे कृष्ण आप ही इनका उद्धार कर सकते हो। उन्होंने गंगा जल और तुलसी पत्र से भगवान की शालिग्राम रूप में भगवान को पूजा। तो उनकी प्रार्थना सुन करके शिला गौर भगवान जो है पृथ्वी पर प्रकट हुए। तो वही यहां पर कहा गया है श्रीवास की पत्नी मालिनी माता सची देवी की परम सखी थी। वे एक धात्री के रूप में निमाय की सेवा करती। धात्री सब समझते हैं ना, मिडवाइफ नर्स या क्या कहते हैं उसको, दाई दाई भी कहते हैं। उन्हें सेवा की शुरू से, बचपन से उनको यह मौका मिला। जब विशंबर प्रकट हुए समस्त भक्तगण के हृदय वात्सल्य भाव से संपूर्ण हो गए। शिला गौरचंद्र मालिनी एवं श्रीवास के दूसरे माता पिता के सदृश प्रेम करते थे। उनको मालिनी माता को और शिला श्रीवास को गौर भगवान के दूसरे माता पिता कहा है, बड़ा प्यार किया उन्होंने। शुद्ध भक्त है भगवान की, उनकी लीला में भाग लेने के लिए आए हैं। श्रीवास आंगन यानी कि श्रीवास जी का घर निमाय की बाड़ी घर से 200 गज उत्तर की ओर स्थित थी। श्रीवास पंडित के भव्य भवन में विशाल सुखद कक्ष, एक ऊंची सुरक्षात्मक सीमा प्राचीर तथा हरे भरे सघन वर्णित कुंज व निकुंज थे। प्रत्येक रात्रि श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके प्रिय मित्र वहां हर्षोन्मादक कीर्तनों का आनंद उठाते तथा वृंदावन के रसों का स्वादन करते। शिवा जी के घर में निमाई भगवान बालू में महादेव भजन कीर्तन वहां होते। उस समय क्योंकि बंगाल की हालत बड़ी खराब थी, भक्त लोग आनंद लेते थे वृंदावन के भाव का। यही पर मुसलमान काजी ने क्रोध भेष में श्री कृष्ण के संकीर्तन आंदोलन को दबाने के अपने मूर्खतापूर्ण प्रयास में उनका पवित्र मृदंग तोड़ दिया था, काजी ने तोड़ा था। घटना के अनंतर श्रीवास आंगन खोल भंग दंगा वह स्थान जहां मृदंग तोड़ा गया था के नाम से विख्यात हो गया। देखो एक बात यहां विचारने की है, विचारने की बात यह है कि श्रीवास शुद्ध भक्त हैं और उस समय यवनों का राज था, मुसलमानों का राज था, हिंदू और मुसलमान मिलकर के काजी को शिकायत की और काजी ने मृदंग तोड़ दी और कहा जो कीर्तन करेगा उसकी जाति भंग कर दी जाएगी। तो गौर भगवान ने, भक्त तो घबरा गए कि प्रभु हम बिना कीर्तन के कैसे यहाँ रह सकेंगे। तो गौर हरि ने, यहाँ से गौर हरि की कृपा से हम सब ने शिक्षा लेनी है, कृपा करके सब शिक्षा लो, मेरे करबद्ध प्रार्थना आप सबसे है। गौर हरि ने कहा कल सब एकत्रित हो जाओ, आह्वान किया हजारों मतलब लाखों की संख्या में भक्त इकट्ठे हो गए उनके, भगवान का आह्वान। और क्या किया भगवान ने, काजी पर चढ़ाई कर दी। देखो दूसरों के राज में यह संभव नहीं था, लेकिन जो भगवान यहां ये शिक्षा दे रहे हैं, भक्तों का कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। पर हम भक्ति नहीं, हम डरते हैं, भक्त बनेंगे तो तरेंगे, अगर नहीं बनेंगे तो बोल दो मरेंगे। अब मैं आपको शुद्ध भक्त का उदाहरण देता हूं, प्रभुपाद जी का एक उदाहरण, प्रभुपाद जी की शुद्धि का। कलकत्ता में एक पंडाल प्रोग्राम था, तब आपको पता बंगाल में ये क्या कहते हैं नक्सली बन गए थे और अमीरों को मार देते थे, पता है ना आपको। तो प्रभुपाद उन्होंने नक्सलियों ने चिट्ठी भेज दी कि कोई प्रोग्राम नहीं होगा यहां पर, हम मार देंगे। प्रभुपाद के पास चिट्ठी आई, ये बात मुझे प्रभुपाद के सचिव ब्रह्मानंद ने बताई, जो प्रभुपाद जो पहला भक्त बना था इस्कॉन में। तो चिट्ठी जब प्रभुपाद के पास आई, एडवर्टाइजमेंट हुई है, प्रभुपाद ने कोई नक्सलियों की परवाह नहीं की, पहुंच गए प्रभुपाद वहां पर, प्रवचन शुरू कर दिया। नक्सली आए, आए तो उन्होंने पिस्टल उनके हाथ में है, देखा दुखा किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, सब चले गए। जब तक भगवान की अनुमति नहीं हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कहा है ना राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। पर मेरा विश्वास नहीं है, मेरा विश्वास मेरे मन में है, मुझे मार देगा, मुझे वो मार देगा। मैंने एक बहुत बड़े कथावाचक को कहा, उसने हमें शालिग्राम भी दिए, वृंदावन में मिला हमें। मैंने कहा, पूछा उसको, मैंने कहा भाई आजकल के ये पॉलिटिशियन जो हैं ये कैसा कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रभुपाद जी ने पॉलिटिशियनों के बारे में कितना कहा है, आप पढ़ो पुस्तकें प्रभुपाद जी की, क्योंकि भक्त ही सच्चाई बोलने का दम रखता है। वो बड़ा कथावाचक, तिलक लगा रखा है और उसके शीर्ष खुशबू आ रही है, अतर फ्लेल भी लगा रखा है उसने। तो मैंने कहा भाई मैं कैसा कर रहे हैं पॉलिटिशियन ये, कहता जी ठीक नहीं कर रहे हैं, मैं कुछ करना चाहिए कि नहीं, हम करेंगे तो मार देंगे हमको। मैंने कहा कैसा करता है ये, इसको तो मौत का डर है, भरोसा ही नहीं है, कैसा करता है, कथावाचक है, लेकिन डर है बड़ा। प्रभु पास सबसे कथावाचक है, कोई डर इनको नहीं किसी का, क्यों जैसा नाम वैसा काम। इनके पिता शिला गौर मोहन, उन्होंने इनको अपने बेटे को नाम दिया अभय, तो इनके गुरुदेव ने भी नाम नहीं बदला, गुरुदेव ने देख लिया तो आगे जाके कार्य करेगा, और कहा पहली भेंट में इनको, तुम एक पढ़े लिखे नव युवक हो, तुम अंग्रेजी भाषी संसार में कृष्ण भावना का प्रचार करो, पहली भेंट में कह दिया 1922 में। पूरी लाइफ टाइम तैयारी करते रहे गुरु महाराज, 1965 में अमेरिका गए और 1966 में संस्था की स्थापना की, और आज पूरी दुनिया में केंद्र है। जिस तेजी से प्रभुपाद के समय में प्रचार हुआ था ना, उस तेजी से अभी नहीं हो रहा है, हो रहा है, इसको पूछते हैं थोड़ा हो रहा है ना। प्रभुपाद ने 7 साल में पूरी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए थे। आपको पता कितना धन हिंदुस्तान से प्रभुपाद लेकर गए थे, 7 अरब। अरे ले जाने नहीं देती थी गवर्नमेंट कुछ भी, मात्र $7 लेकर गए थे। $7 में अरबों की प्रॉपर्टी बना दी। ये है भक्ति, ये है भक्ति की शक्ति। और मैंने पहले भी बताया था आपको, एक बार अमेरिका में प्रभुपाद लेक्चर कर रहे थे, कहते हैं सच्चाई बोलने का दम होना चाहिए ना, योर सिविलाइजेशन इज द सिविलाइजेशन ऑफ कैट्स एंड डॉग्स. तुम लोगों की सभ्यता यू है कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता है. किसी की हिम्मत है किसी के देश में जाकर ऐसा कहने की? बोलो, प्रभुपाद की हिम्मत थी. बहुत सारे खड़े हो गए, हाउ डेयर यू से दिस, हाउ डेयर यू कॉल अस कैट्स एंड डॉग्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे कि हमें कुत्ते बिल्लियां कहने की? प्रभुपाद ने हाउ यू से प्रूव किया. क्या प्रूफ है उसका पता है आपको? आपको पता अमरीका में जब बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया जाता है ना, तो बाप का नाम नहीं दिया जाता, मां का नाम दिया जाता है. क्योंकि उसके कई खसम है, एक थोड़ा है. ये पशुओं में होता है, मनुष्यों में नहीं होता. मनुष्य एक पत्नी, स्त्री एक पति. पशु में क्या है? आज एक गल प्रभुपाद मंकी का उदाहरण देते हैं ना, बंदर का. बंदर जो तगड़ा बंदर चल रहा है, 20 गर्लफ्रेंड उसके साथ चल रही है, 20 बंदरियों के साथ वो चल रहा है. और जीवन है कोई बंदरों का? प्रभुपाद ने उदाहरण दिया ये, तो क्या जीवन है वहां पर? मैं एक बातों में समय पर समाप्त करने का प्रयास करना है मुझे. मैं वाशिंगटन डीसी में था, एक दंपति पति पत्नी गोरे वहीं के, हमारा एक शिष्य वहां पर है नवीन कृष्णदास. कहते हमारा ये रावण बनता है, रावण जैसा है, लगता था बड़ा तगड़ा. रामलीला होती है ना वहां पर, तो रावण बनता है ये महाराज मंदिर में रेगुलर आता है. तो मैंने पूछा भाई कैसे हो आप, जब कितना करते हो? मेरे बात तो पता पूछा मैंने, मैं बच्चे कितने तेरे? कहते आई हैव वन सन फ्रॉम हर, पत्नी भी साथ में बैठी है, वन सन फ्रॉम प्रीवियस वाइफ. वो कहती है आई हैव वन फ्रॉम हिम वन फ्रॉम प्रीवियस हस्बैंड. जब ये कहा तो उसको पता, फिलोसफी पता लग गई है उसको. वो क्या कहते हैं, कलयुगा कलयुगा. पर ये कलयुग है और ये कलयुग भारत में भी गुजरा है, लेकिन हम कुछ प्रयास नहीं कर रहे इसको रोकने का. अरे कौन कृपा से और प्रभुपाद कृपा से ये कलयुग रुक सकता है अगर आप लोग हिम्मत करो तो. कल का यही प्रसंग था चैतन्य चरितामृत में, बड़ा सुंदर प्रसंग था. प्रभुपाद कह रहे हैं तात्पर्य में, अगर गौर भगवान और गौर भगवान के भक्तों की कृपा हम लेकर चले, जैसा हमने मार्गदर्शन किया वैसा करें, तो कलयुग को भारत से भगाया जा सकता है. जैसे वहां श्लोक आया, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्णा तहां नहीं माया रे अधिकार. कृष्ण भगवान शक्तिशाली सूरज के समान है और माया अंधकार के समान है. जहां शक्तिशाली सूरज भगवान है वहां अंधकार रूपी माया नहीं रह सकती. लेकिन हम लोग अपने कामों में फंसे. प्रभुपाद ये कहते कहते चले गए, हम नहीं समझ रहे. हम समझे, आइए आ जाओ, देर बेटर लेट देन नेवर. गौर भगवान के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ निष्काम भाव से. देखो ये राजधानी धर्मधानी बन जाएगी और पूरा भारत बदल जाएगा. लेकिन नहीं हो रहा जैसे काम होना चाहिए. काम चलाओ, काम हो रहा है. आगे क्या कहा है यहां पर, श्रीवास आंगन में श्रीवास पंडित के भव्य भवन में विशाल सुगत कक्ष, एक ऊंची सुरक्षात्मक सीमा प्राचीर तथा हरे 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 भरे सगन परनिल कुंज बा निकुंज थे. प्रत्येक रात्रि श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके प्रिय मित्र वहां हर्षोन्मादक कीर्तन का आनंद उठाते तथा वृंदावन के रसों का आस्वादन करते. यहीं पर मुसलमान काजी ने क्रोध वेश में श्री कृष्ण के संकीर्तन आंदोलन को दबाने के अपने मूर्खतापूर्ण प्रयास में उनका पवित्र मृदंग तोड़ दिया था. उस घटना के अंतर श्रीवास आंगन खोल भंग डंगा, वह स्थान जहां मृदंग तोड़ा गया था खेत नाम से विख्यात हो गया. काजी ने संकीर्तन पर रोग संबंधी एक अध्यादेश जारी कर दिया. कहा गया कि उल्लंघन कारियों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें मुसलमान बना दिया जाएगा तथा वे अपनी संपत्ति से हाथ धो बैठेंगे। यद्यपि अधिकांश नदियाबासी इस आदेश से भयग्रस्त हो गए, शिवास पंडित एवं मतांग कानून पर हंस दिए। मैंने पहले कहा ना, जब ये काजी का आदेश आया कि जो कीर्तन करेगा, पहले मृदंग तोड़ दी, कीर्तन करेगा उसको मुसलमान बना दिया जाएगा और संपत्ति छीन ली जाएगी। लेकिन श्रीवास ठाकुर हंस पड़े, शुद्ध भक्त है भगवान के, ऐसे प्रभुपाद जी भी कोई चिंता नहीं करते थे। इनके चंद चिन्हों पर चलो, बड़ी बात ध्यान में ये रखो, निष्काम सेवा करो, कामना मत कुछ करो, निष्काम भाव से सेवा करो, हृदय पवित्र होगा और गौर हरि कृपा करके हमें अपनी सेवा में निमित्त बनाएंगे। श्रीवास आंगन के भीतर भगवान श्री गौर सुंदर ने अपने समस्त नित्य पार्षदों को अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। दिव्य रूप, श्रीवास पंडित का घर श्री गौरांग के संकीर्तन आंदोलन का मुख्यालय था, वहीं से संकीर्तन शुरू हुआ। यहीं पर दैनिक भागवत कथा, रात्रि कीर्तन तथा भगवान गौर राय की अनेक अंतरंग ब्रज लीलाएं घटित हुई। गौर हरि कृष्ण है, एक भक्त के भेष में छुपे हुए हैं, वो स्वयं कृष्ण है। ब्राह्मण समुदाय के मुख्य विद्वानों श्रीवास पंडित एवं श्री अद्वैत आचार्य ने अपना संपूर्ण सामर्थ्य महाप्रभु के हरि नाम संकीर्तन आंदोलन को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने तन मन सदन प्रियजन परिजन तथा सकल संपत्ति श्री गौरांग महाप्रभु की सेवा में भेंट कर दी। यह हमें सीखना है, सब कुछ भगवान को, तन मन धन संपत्ति भेंट कर दी गौर हरि को। हम भी निष्काम भाव से सेवा करें, कोई कामना ना करें, वे किसी अन्य देवी अथवा देवता को नहीं जानते थे। श्रीवास पंडित अपने परिवार का भरण पोषण इसलिए नहीं करते थे कि वे उनके संबंधी थे, वरना इसलिए कि वे श्री चैतन्य के प्रेमी सेवक थे, चैतन्य महाप्रभु के प्रेमी सेवक थे। सब कुछ अर्पण कर दिया, यही भगवान ने कहा कि सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, लेकिन मन मेरा इतना मलिन, हम शरण में नहीं आ पाते। समय बीत जाता है और यमदूत आ जाते हैं लेने के लिए। श्रीवास पंडित जीव तत्व हैं, वे बद्ध जीवों के हितेशी थे। श्री गौरांग महाप्रभु के संग संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार करने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रीवास पंडित लोक लोकांतर के प्रचारक तथा भगवान के निष्ठावान पार्षद नारद मुनि हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, चेतन लीला में श्रीवास ठाकुर का बहुत बड़ा स्थान है और वहीं से शुरू हुआ संकीर्तन आंदोलन श्रीवास आंगन से। एक बात मुझे श्रीवास के जीवन की याद आ रही है, मेरे जीवन में भी ये बात नहीं है, पर मैं भी प्रयास कर रहा हूं, आप सब भी प्रयास करो उस बात को जीवन में लाने का। सही भक्तों से मेरा अनुरोध है, बंद दरवाजा करके अंदर कीर्तन होता था, क्योंकि बंगाल की हालत बड़ी खराब थी। एक चपल गोपाल था, चपल गोपाल तांत्रिक था। चपल गोपाल ने देखा, भाई ये बड़े अंदर इधर कीर्तन करते हैं, श्रीवास बड़ा कीर्तन, इसके कलेई मैं खोलता हूं। रात के अर्धरात्रि को वो आया, वहां काली पूजा का सामान उनके घर के आगे रख गया, मांस शराब ये वो। सुबह आ गया, उधर आ गया जब तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या तुम इसको वैष्णव कहते हो? ये देखो काली पूजा का सामान इसके घर के आगे पड़ा हुआ है। बड़ा शोर मच गया, श्रीवास जी आ गए। पता लगा कि उन पर आलोचना की जा रही है, उन पर ये दोष लगाया जा रहा है कि वो काली पूजक है। श्रीवास ठाकुर पता क्या कहते हैं? हाँ, काली पूजक, जब बिल्कुल झूठ है फिर भी वो वैष्णवों की विनम्रता। हमें भी नम्र बनना है श्रीवास ठाकुर की कृपा से। जब हम कहा कि हाँ तो अभी वो स्वीकार ही कर लिया उन्होंने, लोग भी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, अभी क्या होगा कि चप्पल गोपाल भी चला गया और क्या कहता हुआ क्या। श्रीवास जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गौर राय कृष्ण भगवान ने ये अपराध सहन नहीं हुआ उनसे और उसको अपना चप्पल गोपाल को कोड़ पड़ गया, ब्रोक इनटू ए लेप्रेसी, हाथ पांव गिर गए, कीड़े पड़ गए, घर वालों ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, बुरी हालत, तड़प रहा है वो। तो गौर भगवान एक बार वहां से गुजरे, ठाकुर मेरे पर कृपा करो। भगवान कहते हैं मैं तेरे पर कृपा नहीं कर सकता, ऐसे नहीं बैठते मंदिर में, तूने श्रीवास ठाकुर के चरणों में अपराध किया है, श्रीवास से क्षमा मांगो जाकर। ऐसा नटराव में लिखा है, मंदिर में ऐसे बैठने से अपराध है। पता है कौन, घुटनों को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, जितने अपराध हम करेंगे उतने पीछे हटेंगे, अपराधों से मुक्त होंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा, अभी जब भगवान ने कहा श्रीवास ठाकुर से क्षमा मांग, गे वैष्णव कितने दयालु होते हैं, गे चलो तो उन्होंने क्षमा कर दिया और वो ठीक हो गया, चप्पल गोपाल भी ठीक हो गया और वो उसको भक्ति मिल गई। तो श्रीवास ठाकुर जब उन भाई हम अपने चेले चापड़ों की बात कर रहे हैं, हमारे आत्मा कहती है चेले चापड़, महाराज आपके चेले चापड़, चापड़ शब्द लगा दिया साथ में, हमारे चेले चापड़ों को प्रयास करते हैं समझाने का, दूसरे तो सुनते नहीं, आगे से जो चेले चापड़ भी हमको 50 सुनाते हैं आगे से, हम कभी सुधारने का प्रयास करेंगे, गलती नहीं मानेंगे बल्कि हमें गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। श्रीवास ठाकुर गलत भी नहीं है फिर भी कहते मैं गलत हूं। हमारे गुरु जी कभी हमें डांटते थे, उनकी बड़ी डांट हमें पड़ी, उनकी कृपा थी हमें कभी भी। अभी एक बार मैं सुनाऊंगा आपको बात, मैं दो घटनाएं सुना दूंगा जल्दी से। क्या हुआ, वृंदावन में जब प्रभुपाद जी का मैं सेवक था 1975 में, तो मुझे प्रभुपाद ने कुछ काम करने के लिए कहा, मैं माला ली और नीचे रख दी जमीन पर, नीचे रख दी। तो प्रभुपाद प्राय मेरे साथ हिंदी में बात करते थे, कहते माली माली, मुझे समझ नहीं है माली क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, प्रभुपाद क्या माली, हमारे माला कहते हैं ना, जप माला नीचे क्यों रखी। मैंने कहा प्रभुपाद चादर है, चादर पर रखी है। क्या चादर पर चलता नहीं है तू, तेरे पांव नहीं लगते चादर को, ऐसी डांट मारी है ना। तो उसे समझ गया, प्रयास करता हूं दूसरों को समझाने का, निकल नहीं सुनते। एक बार बंबई में हम बैठे थे, पुराना मंदिर था, छोटी सी जगह थी, बीच में रास्ता था भगवान राधा दास बिहारी को प्रणाम करने का, इधर प्रभुपाद जी बैठ करके प्रवचन कर रहे हैं और एक आदमी आया रास्ते में बैठ गया। तो मैं उसको कहता हूँ पीछे पर रास्ते में मत बैठ, मुझे पता कि मेरे पिता परम पिता मेरे गुरु महाराज मुझे देख रहे हैं, कहता तू भी पीछे हट, मेरी बोलती बंद हो गई, ऐसी डांट हो जाएगी, तू भी पीछे हट। तो ये उनकी कृपा थी, हम उनके आगे बोले नहीं, कभी जवाब नहीं दिया उनको, कभी मन में आता था क्यों इतनी डांट पड़ती। तो मैंने एक बार पूछा था उनको, मैंने प्रभुपाद जब आप हमें डांटते हो उसमें अच्छे मूड में थे, उनका मनोभाव उस समय अच्छा था, मैंने प्रभुपाद आप जब डांटते हो हमें क्या करना चाहिए, कि तुम्हें हंसना चाहिए, यू शुड लाफ। मैं प्रभुपाद ऐसा क्यों, कि देखो इतने लोग दुनिया में हैं, सब बुरे कर्म कर रहे हैं, उनको कोई मना करता है, जब शिष्य को गुरु मना करता है इसका मतलब उस आत्मा पर कृष्ण की कृपा हो रही है। देखो कितने रहस्य की बात उन्होंने कही। तो एक और था हमारा वो गुरु भाई, वो आया था प्रभुपाद की घड़ी चुराने के लिए, वो जेब गुदरा था, आया था प्रभुपाद ने दिल्ली चुरा लिया, उसका भक्त बना दिया उसको। तो मेरे को प्रभुपाद ने कहा एक यहां पर चोर भक्त बना हुआ है। मैंने प्रभुपाद कौन है, कहते नाम नहीं बताऊंगा मैं, वह इतने महान थे प्रभुपाद कि उसको बदनाम भी नहीं करता। लेकिन वो चोर जो है वो अभी भी है संस्था में, खुद कहता है मैं चोर था। एक बार मैंने खुद उसके लेक्चर से सुना था, तो प्रभुपाद जो है उसको, उसने एक बार, मैं मेरी जैसे नेचर है मैं डांटता हूँ, जो मैं चेले नहीं बनाता, चेले मुझे गुरु बनाते हैं। ये कुछ उदाहरण यहाँ एक है यहाँ पर है, अरे मैंने तुम्हें चेला बनाया था जो तूने मुझे गुरु बनाया था, बता दे हैं कैसे बनाया था। कहता रो रो के बनाया था। हाँ एक और मेरा चापड़ यहाँ बैठा हुआ है, मैंने तुम्हें चेला बनाया था जो तूने मुझे गुरु बनाया था। मैं कह रहा बोलो, पता ही नहीं लग रहा क्या बोल रहा है। अरे क्या कह रहा है, आवाज नहीं तेरी निकलती, डरता है तू है? मुझे बनाते हैं, मैं नहीं बनाता चेले, मैं चेले नहीं मुड़ता, समझाए नहीं। तो हमें ये बातें समझनी है। मैं भी डांटता हूं जब चेलों को, आगे से कई सुनाते हैं मुझे, जब कई इन्होंने बनाया मुझे, कई समझाता हूं नहीं समझते। तो पहले मुझे बड़ा कष्ट होता था, लेकिन प्रभुपाद समझा रहे हैं भाई ज्यादा उम्मीद मत करें इनसे। प्रभुपाद मेरे मार्गदर्शक हैं, आज भी हैं, आपको बता रहा हूं मैं सत्य कह रहा हूं। और हमारे जो सिंसियर हमारे भक्त हैं उनके भी मार्गदर्शक हैं, हमारी कई समस्याओं का आज भी समाधान करते हैं ये। आपके सोचो हम ऐसे ही उधर बैठे हैं जम्मू कश्मीर, यहां टेररिज्म है, टेररिज्म हमारे सामने शुरू हुआ और प्रभुपाद और गौर नेता सिंहदेव की कृपा से अभी कोई 1-2% रह गया है, इनकी कृपा से हम बैठे हैं वहां पर, जहां बैठे हैं यहां प्रभुपाद है, वहां एक भी टेररिस्टों की घटना नहीं घटी, नृसिंह भगवान ने वहां घटने नहीं दी। जम्मू में घटी, श्रीनगर में घटी, कोई शहर बचा ही नहीं। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूं सरीन जी, नहीं उधमपुर में एक भी घटना नहीं घटी। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभुपाद की कृपा, उधमपुर में जब इनकी कृपा से नृसिंहदेव आए, विग्रह है नृसिंहदेव के, मुझे एक ने पूछा कि आपने नृसिंहदेव की स्थापना क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा यहां जम्मू कश्मीर का टेररिज्म खत्म हो। वह जैसे नृसिंहदेव पधारे बॉक्स में आए, भक्तों ने जाकर दूर से रिसीव करके लाए उनको, आए तो बॉक्स से निकले और एक माता को दर्शन दिए, चक्कर लगाया, कहते सब ठीक चल रहा, फिर बॉक्स के अंदर चले गए। जैसे ही नृसिंहदेव वहां पधारे तो पाकिस्तान में पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भूकंप आया और 1.5 लाख उग्रवादी साफ, उनके मदरसे खत्म, उनके ट्रेनिंग कैंप खत्म, उनके हॉस्पिटल खत्म। बहुत बड़ा भूकंप आया था, पता आपको नहीं, लोग नहीं समझते ना, हम समझ रहे हैं प्रभुपाद की कृपा से। और उसके बाद ही उनको भी अकल आई मुसलमानों को कि भाई नहीं कुछ है, हम गलती कर रहे हैं। उसके बाद टेररिज्म एक आई डीजी डायरेक्टर जनरल पुलिस, वो हमारे संपर्क में, हमें मानता है, हम उसे मिलने जाते श्रीनगर, कहते आओ मेरे दफ्तर में आओ। गए उसके दफ्तर में, हम थे, संजय था और भी थे, भक्त थे। कहता देखो हमने 99.9% टेररिज्म खत्म कर दिया। मैंने तूने क्या किया यार, करने वाले ने किया, तुम क्या कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते, लेकिन लोगों की बुद्धि मलिन है ना। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, प्रभुपाद बड़े दयालु हैं, श्रीवास ठाकुर बड़े दयालु हैं, उनके शिष्य चरणों में यही प्रार्थना है कि हमें सहनशीलता दें और हमें गौर भक्ति दें, गौर नेता की चरणों की भक्ति दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और श्रीवास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ मेरे को और आप सबको मिल करके हम सब गौर भक्त बने, गौर पार्षद बने और अपने भविष्य को उज्ज्वल करें। हरे कृष्ण।